Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो हमारी भावना है कि उससे हम अवज्ञ हों, ज्ञात हों, उससे हम परिचित हों, फिर भी समझ में नहीं आ रही है, तो परमात्मा ही समझता है कि इसके लिए और सरल बन जाना चाहिए। तब उन्हीं गुणों के माध्यम से वह आकारवान बन जाता है। तो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इसके बाद भी उद्धार नहीं हुआ, भक्तों का कल्याण नहीं हुआ, तो फिर वो पशु में ही जाएगा। परमात्मा समझता है कि वो खाने पीने मौज करने वाला है, तो उसको अगले जन्म में तो पशु ही बना देना चाहिए। परमात्मा ने अपने तरफ से बहुत कुछ किया। वह अपने अवतरण के क्रम में वह निर्गुण निराकार से सगुण निराकार बना, सगुण निराकार से सगुण साकार बना। वो इतना आपके नजदीक आना चाह रहा है और आप जहां के वही हैं, तब फिर परमात्मा कहता है कि फिर जाओ, तो दूसरे जन्म में फिर निश्चित ऐसे सगुण साकार को भी समझ नहीं सकने वाला मनुष्य का संसार में फिर उद्धार होने का और कोई उपाय नहीं है। बात समझ में आ गई? सगुण साकार के स्वरूप को भी नहीं समझने वाले मनुष्य का फिर संसार में उद्धार करने का और कोई उपाय नहीं है। आप कह सकते हो कि नहीं महाराज, नाम जप, नाम कीर्तन, ये तो उद्धार के उपाय हैं। अरे भाई, नाम जप और नाम कीर्तन सगुण साकार के ही तो हैं। यदि आपको सगुण साकार, नाम जप और नाम कीर्तन में मन लगता है और सगुण साकार यानी नाम जप नाम कीर्तन में आप लगे हैं, इसका मतलब आप सगुण साकार को समझ गए, इतनी सी पर्याप्त हो जाएगा। सगुण साकार का प्रयोजन इतना ही है, आपके सामने आकर वो खड़ा नहीं होगा। सगुण साकार का मतलब होता है वो अपना रूप नहीं बनाता है, उसके नाम के माध्यम से, उसके लीला के माध्यम से जब आप साधना में लगते हैं तो आपके भावनाओं के आधार पर वो आपके सामने व अनुभव के रूप में आ जाता है। ये उसकी सगुण साकारता है, यही तो बात है। भागवत आप लोग कई बार सुने हैं, भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण का कंस चाणूर मर्दन के जो प्रसंग आया, कंस और चाणूर के मर्दन का जो प्रसंग आया मथुरा में, वृंदावन में नहीं, कंस चाणूर का मर्दन वृंदावन में हुआ कि मथुरा में हुआ? हाँ, ये तो आपको पता ही है। जब कंस चाणूर के मर्दन का प्रसंग आया तो भगवान श्री कृष्ण उस रंगमंच में पहुंचे जहां कंस और चाणूर भगवान श्री कृष्ण को मल्ल युद्ध के माध्यम से उसको उस मल्ल युद्ध अखाड़े में, ये बड़े नामी पहलवान थे कंस चाणूर, ये बालक है उसको तो मसोल देगा, एकदम पकड़ के नष्ट कर देगा। जब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रवेश किए तो बानखेड़े स्टेडियम की तरह सभी लोग दर्शनार्थी थे वहां। है? कल शाम को फाइनल हो गया, ट्रॉफी कौन ले गया? राजस्थान, राजस्थान ले गया। चलो, राजस्थान की घी और चूरमे की लड्डू जिंदाबाद है। दक्षिण भारत के रसम कमजोर पड़ गया चूरमे के लड्डू के सामने। मद्रास के साथ था ना कल फाइनल, तो रसम सांभर, तो वहां तो राजस्थान में तो चूरमे की लड्डू और घी डाल के सांगरी का सब्जी खूब खाते रहे थे। तो वो बलवान हो गया, वो जीत गया। ठीक है, तो हम कहने चाह रहे थे कि उस रंगमंच में उस दृश्य को देखने के लिए बहुत से उपस्थित थे, जहां नंद बाबा भी उपस्थित थे और बहुत लोग थे। तो एक बात हम भी साफ समझ जाइए कि प्रवचन हॉल के अंदर मोबाइल के स्विच ऑफ करके आना, ये प्रेमपुरी आश्रम को के ट्रस्टी का निर्णय करना पड़ेगा क्या फिर मीटिंग करके? अच्छा भाई, ट्रस्टियों के द्वारा निर्णय नहीं किया है इसलिए आप लापरवाही कर रहे हो, तो निर्णय भी करा देंगे कल मीटिंग बुलाकर। क्योंकि हमारे गिरीश भाई कहते हैं ना, ट्रस्ट में ये निर्णय हुआ है सूचना देते हैं, उस बात को आप सावधान रखें। तो ट्रस्ट निर्णय करे चाहे न करे, हम निर्णय कर रहे हैं कि एक घंटा आप स्विच ऑफ करें, या फिर स्विच ऑफ न करें, साइलेंट में रखें तो मैसेज आते रहेंगे, उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा, और आप यहां से निकलें तो फिर वो ओपन करें तो मिस कॉल आपके पास रहेगा, किसने हमको समझा है, हम परमात्मा को समझने के लिए यहां बैठे और हमको कौन समझ रहा है घर में बैठे बैठे, पता तो चल जाए। देखो लिखा तो सब कुछ है, दिखना चाहिए लिखा तो कई जगह है, दिखना चाहिए। मुझे लगता है इस यहां जितने आप लोग हैं कोई भी सिगार नहीं पीते होंगे, हाँ? नहीं, यहां जितने बैठे हैं, यहां बैठे हुए श्रोताओं के बीच में या यहां न पिए बाहर भी नहीं पीते होंगे, मुझे तो यह लग रहा है। परंतु सिगार पीने वाले उस डब्बे में लिखा रहता है कि नहीं, बोलो, कि सिगार पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, ये शब्द हमेशा उस डब्बे में लिखा रहता है, सिगार के डब्बे में लिखा रहता है, लेकिन वो पीने वाले को दिखता है कि नहीं, बोलो। तो ऐसे हुआ है, प्रेमपुरी आश्रम के जगह जगह नोटिस लिखा है लेकिन दिखता नहीं है, वो सिगार पीने वाले की तरह। तो हम ये कहने जा रहे थे किसको दिखा, जब भगवान श्री कृष्ण रंगमंच में जब प्रवेश करने लग गए तो वहां नंद बाबा आदि भी बैठे हुए थे जो परमात्मा के सगुण साकार से जुड़े हुए थे, उन लोगों को तो साक्षात परमात्मा का दर्शन हुआ। और जो माताएं बैठी हुई थी जिसकी हृदय में अपने बच्चों के प्रति बड़ी ममता थी और मोह था और आसक्त थी, वो वहां तो आए थे लेकिन उनका चिंतन बार बार अपने बच्चों में था, तो उनको लगा कि कहीं मेरा ही बेटा तो नहीं आया, कितना मासूम बच्चा आया है। उनके स्तन से दूध निस्सरित हो गए, उनको कृष्ण परमात्मा न दिखकर बालक बच्चे के रूप में दिखा। ये भागवत प्रमाण है, मैं नहीं वो कह रहा हूं। परमात्मा ने वो बालक का रूप धारण किया ये बात नहीं, परमात्मा ने परमात्मा का रूप धारण किया इसीलिए संतों को परमात्मा दिखाई पड़ा, परमात्मा ने बालक का रूप धारण किया इसीलिए उन माताओं को बच्चे का रूप दिखाई पड़ा, ये बात नहीं है। और भागवत में ये लिखा हुआ है, किसी रागयुक्त महिलाएं स्त्रियां थी, उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई पड़े, कामदेव के रूप में, दुनिया में सबसे बढ़िया रूपमान व्यक्ति यह है। और इसका स्पर्श सुख एक बार मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। कुछ स्त्रियां उसी रंगमंच में बैठी हुई थी जिनके अंदर राग था, वे तो कामदेव के रूप में देखने लग गए, परमात्मा ने कामदेव का रूप धारण किया इसीलिए उन्होंने देखा, ये बात नहीं है। वास्तव में कामदेव का रूप धारण करते होते तो उन ऋषियों को भी कामदेव दिखता, उन माताओं को भी कामदेव ही दिखता, उन स्त्रियों को भी कामदेव दिखता। जैसे कामदेव स्त्रियों को दिख रहा है तो माताओं को नहीं दिख रहा है और ऋषियों को नहीं दिख रहा है। और उसी अखाड़े में जो और बलवान पहलवान लोग बैठे हुए थे मल्ल युद्ध को देखने के लिए, उनको लगा कि यह सबसे बड़ा पहलवान है, इसके साथ एक बार मल्ल युद्ध में लड़ाई करने को मिल जाए उनके मन में तो यही हुआ। और कुछ उसी रंगमंच में चोर व्यक्ति बैठे थे, उनको लगा ये तो सबसे बड़ा चोर है, इस चोर की जितनी भी चोरी के जितनी भी सूत्र हैं इसके पास है, इनको गुरु बनाकर कुछ विद्या इनसे सीखनी चाहिए। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। उन लोगों को तो ये तो चौराग्र गण्य, ये सबसे बड़ा चोरों का सरदार है, चोरी करने की सारी विद्या इसके पास है, कुछ कला कुछ सूत्र इससे हमको प्राप्त हो जाए तो हम अपना जीवन सफल सफल हो जाए। देखो तो परमात्मा ने क्या ये सारे रूप वहां बनाया? नहीं, भावना के अनुसार परमात्मा का रूप दिखा, यही सगुण साकार का स्वरूप है। संत लोग बताते हैं, संत तुलसीदास जी वृंदावन गए, द्वारिकाधीश के मंदिर में हजारों की भीड़ थी, सभी लोग द्वारिकाधीश के जय जयकार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, न्यूछावर कर रहे हैं। तुलसीदास जी खड़े हैं, क्या हो रहा है, तुम लोग पागल हो, परमात्मा कहां है, परमात्मा नहीं है, तुम लोग वो जय जयकार कर रहे हो, भगवान नहीं है, मैं किसका दर्शन करूं, कहां है परमात्मा। सब लोग कहने लगे देखो बांके बिहारी की छवि इतना सुंदर है तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, ना हाथ जोड़ रहे हैं ना जय जयकार कर रहे हैं संत तुलसीदास जी, किसको करें, घर को करें, मकान को करें, पत्थर को करें, खंभों को करें, किसको करें। तब सब लोग चले गए, दर्शनार्थी चले गए, संत तुलसीदास जी वहीं खड़े हैं। पुजारी ने कहा कि बाबा क्या बात है, अब हाथ भी नहीं जोड़ रहे और यहां खड़े हैं खंभे की तरह। बोले आया तो था हाथ जोड़ने के लिए परमात्मा को, लेकिन परमात्मा ही नहीं है तो क्या हाथ जोड़ूं, मैं खंभों को हाथ जोड़ूं। पुजारी समझ नहीं पा रहे थे, तब तुलसीदास जी ने मन ही मन कहा कि ये परमात्मा क्या बात है, तुम आज कहां गए हो, मैं जिसको हाथ जोड़ता रहा आज तक वो चीज कहां गई, क्यों मुझे यहां आकर क्यों मुझे धोखा दे रहे हो, क्या तुम्हें दर्शन करने के लिए मुझे फिर आगे अयोध्या ही जाना पड़ेगा, मैं तो यही समझता था कि तुम सब जगह हो, सब जगह हो तो वृंदावन में भी हो, लेकिन क्या बात है कि आप वृंदावन में नहीं हो, क्या तुम्हारे दर्शन के लिए मुझे फिर अयोध्या जाना पड़ेगा। तो भगवान समझ गए, तब धीरे धीरे बांसुरी फेंक दी कृष्ण ने और धनुष बाण हाथ में ले ली। ये संतों ने कहा है, लिखा है शास्त्र में, संतों की अनुभूति। उन्हीं के बगल में दूसरा है, उनको बांसुरी दिख रहा है और उनको संत तुलसीदास जी को धनुष बाण दिखा और जटा जोड़ क्या सुंदर। भगवान राम का दर्शन हुआ, तो राम का वो मूर्ति बांके बिहारी राम के मूर्ति के रूप में राम के रूप में बदल गए ऐसी बात नहीं है, उनकी भावना से उनको राम दिखाई पड़ा उस मूर्ति में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भगवान कैलाश के जब दर्शन कर रहे थे नजदीक बैठकर अभिषेक, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग अनुभव बताया। कोई कहता है कि महाराज मुझे तो साक्षात दर्शन, देखो नेत्र दिख रहा है, देखो त्रिपुंड दिख रहा है, देखो जटाजूट दिख रहा है, और किसी को पत्थर ही दिख रहा है, बर्फ ही दिख रहा है। तो भावना से सगुण साकार जो है परमात्मा भाव भक्तों की भावना से सगुण साकार रूप धारण करता है, इसका मतलब नहीं कि परमात्मा सगुण साकार बनता है, ऐसा नहीं है, ये बात ख्याल रखना। आपकी भावना सगुण साकार की है इसलिए सगुण साकार आपको दिखता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखें तिनते। संत तुलसीदास जी ने इन बातों को बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिया है, ये मंत्र इसी तरह व्याख्या कर रही है। एको अवर्णो, एक है वो परमात्मा दो नहीं हो सकते। जब तुम दो नहीं हो सकते तो परमात्मा दो होगा? तुम इस शरीर में एक हो कि दो हो, आपको क्या अनुभव हो रहा है बोलो? इस शरीर में मैं अकेला हूं ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस शरीर के अंदर मैं भी हूं, मेरा बच्चा भी है, मेरी बीवी भी है, मेरे पति भी है, मेरे कुटुंब है, ये सब इसी शरीर के अंदर है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस शरीर के अंदर तो मैं अकेले हूं? घर के अंदर भले ही बहुत हूं, घर के अंदर मकान के अंदर भले ही बहुत से हूं, परंतु शरीर के अंदर तो मैं अकेले। मैं शब्द जिसको आप प्रयोग करते हैं वह एक ही हो सकता है, मैं का बहुवचन हो ही नहीं सकता है। जब आप एक हैं तो परमात्मा अनेक होगा नहीं होगा? हमारे वैदिक सनातन धर्म में कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि हिंदू धर्म में परमात्मा अनेक हैं। कौन कहता है अनेक है? परमात्मा अनेक नहीं, परमात्मा एक ही है। एको अवर्ण, वर्ण माने विशेषता, वर्ण माने सगुणता, वर्ण माने साकारता। क्योंकि आपकी वाणी जो वर्णन करेगी वो कोई न कोई गुणों के बारे में वर्णन करेगी, और या कोई न कोई आकार के बारे में वाणी की प्रवृत्ति होगी। वाणी की प्रवृत्ति जाति संबंध गुण क्रिया, ये चार वस्तु जहां है वहां वाणी का संबंध होगा। जाति क्रिया गुण और संबंध, ये चार चीज जहां होंगे वाणी वहां पहुंचेगी, वाणी उस वस्तु का वर्णन कर सकती है। जिन वस्तु में जाति का संबंध हो, जिस वस्तु में गुण का संबंध हो, जिस वस्तु में क्रिया का संबंध हो, वहां वाणी पहुंच जाती है उसका वर्णन करने। ये कागज कैसा है? सफेद कागज है कि क्या है? सफेद कागज नहीं है, कागज अलग चीज है, सफेदी अलग चीज है। सफेदी कागज की विशेषता है, जहां सफेदी होगी तो आप कागज को बता सकते हैं। हो सकता है ब्लू भी कागज पेपर हो सकता है, तब पूछा जाएगा कि ये कागज पेपर कैसा है, तो आप कहोगे ब्लू है। पिंक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब के सब उसके सगुणता है, क्योंकि उसके बिना आप पेपर के बारे में कुछ भी नहीं कह पाओगे। इसीलिए मेरे बारे में कुछ कहना होगा तो आपको कोई न कोई सगुणता गुण को जोड़ना पड़ेगा, या कोई न कोई आकार को जोड़ना पड़ेगा, कोई क्रिया को जोड़ना पड़ेगा, कोई जाति को जोड़ना पड़ेगा, कोई संबंध को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप कह सकते हैं। अन्यथा मेरे बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, आपके बारे में मैं कुछ, मेरी वाणी नहीं कह सकती। तो अवर्ण शब्द का अर्थ होता है निर्विशेष। एको अवर्णो, फिर भी ऐसा होता हुआ भी बहुधा शक्ति योगात, अनेक शक्ति, यहां शक्ति शब्द से विशेषण को लेना, गुणों को लेना, विशेषण को लेना, अनेक रूप अनेक विशेषण से युक्त जो शक्ति है उसकी उपाधि, यहां शक्ति शब्द का अर्थ हो गया उपाधि। बहुधा शक्ति योगात, आगे मंत्र आपने उच्चारण किया, अजाम एकाम लोहिता शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपाम, ये माया के बारे में आ गया है। भावी प्रजा अजाम एकाम लोहिता शुक्ल कृष्णाम, लोहित माने रजोगुण, शुक्ल माने सत्वगुण, कृष्ण माने तमोगुण, इन तीन गुणों से युक्त पांचवें मंत्र, चतुर्थ अध्याय का पांचवें मंत्र, अजाम एकाम लोहिता शुक्ल कृष्णाम भावी प्रजा सृजमाना स्वरूपाम, ये माया के बारे में। उसी अनेक रूप को बनाने की क्षमता वाली उस शक्ति से युक्त होकर वो परमात्मा सगुण निराकार बन जाता है, क्योंकि उसमें गुण है, गुण के साथ संबंध होते ही परमात्मा सगुण हो जाता है, और क्योंकि उसके पास आकार है इसलिए उस आकारों से संबंध होते ही परमात्मा साकार बन जाता है। सगुण साकार बनने के लिए और सगुण निराकार बनने के लिए आपके परमात्मा को माया का आश्रय लेना ही पड़ता है। इसलिए आप यदि सगुण साकार परमात्मा का ध्यान पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो माया को हटाकर आप सगुण साकार की पूजा कर ही नहीं सकते, माया को हटाकर आप सगुण साकार का ध्यान नहीं कर सकते, माया को हटाकर आप सगुण साकार से संबंधित हो ही नहीं सकते, निश्चित है। लोकवत्त लीला कैवल्यम, ये सब सगुण माया के माध्यम से है। तब इस बात को कहा गया है कि एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेका निहितार्थो ददाति। अनेक वर्ण निहितार्थ, इस निहितार्थ के दो अर्थ किए गए। निहितार्थ का हम व्यवहार में भी कहते हैं निश्चित प्रयोजन के लिए, निहितम निर्धारितम अर्थ प्रयोजन। निहित माने निश्चितम, निर्धारितम अर्थम प्रयोजनम। किसी एक अर्थ, एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए वो परमात्मा उस प्रयोजन के अनुकूल रूप धारण करता है। आप समझे, रावण को मारना होगा तो कृष्ण नहीं मार सकते, तीन काल में नहीं मार सकते, रावण को कृष्ण नहीं मार सकते, रावण को मारने के लिए तो राम होना ही पड़ेगा, धनुष बाण चाहिए, परंतु कंस को फिर राम नहीं मार पाएंगे, कंस को मारना होगा तो फिर बांसुरी चाहिए। आप समझ रहे, रक्तबीज को मारने के लिए न कृष्ण समर्थ है न राम समर्थ है, रक्तबीज को मारने के लिए कृष्ण और राम समर्थ नहीं है, महिषासुर को मारने के लिए राम और कृष्ण समर्थ नहीं है, उसके लिए तो फिर जगत जननी जगदम्बा का रूप धारण करना पड़ेगा। खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघा छूलम भुसुंडी सिरा, वो चाहिए रक्तबीज और शंख उसको मारने के लिए, तो महिषासुर को मारने के लिए, तो इसी को कहते हैं निहितार्थो ददाति। जो जिस समय जिस प्रयोजन के लिए आवश्यकता है उसी समय उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उस शक्ति योग से, शक्ति से युक्त होकर वो परमात्मा वो रूप धारण करके वो प्रयोजन पूरा करता है, फिर उसका फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो निहितार्थो ददाति, शंकराचार्य जी ने इसका अर्थ ये बताया। दूसरा अर्थ निर्गत अर्थ प्रयोजन, ये सब रूप धारण करने में परमात्मा का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो तो आत्माराम आप्त काम होने के कारण उसका संसार और माया से क्या प्रयोजन है। इसलिए निर्गत अर्थ, निर्गतम अर्थम प्रयोजनम, उसके लिए कोई प्रयोजन, कोई अर्थ नहीं, कोई सार्थकता नहीं है। जगत में आप पैदा होकर आप जीवों के रूप में यहां घूम रहे हो, उससे परमात्मा का क्या लाभ है, उसको क्या लाभ है। आप प्रेम प्रिय आश्रम में आकर प्रवचन सुन रहे हो, उससे परमात्मा को क्या लाभ है, क्या आपके प्रवचन सुनने से वो आनंदित होगा, उसको लाभ मिलेगा, आपके नमस्कार करने से उसको लाभ मिलेगा, आपके अर्चना से पूजा से उसको लाभ मिलने वाला है, कुछ नहीं। आपके प्रयोजन से ये सब हो सकता है उसको कुछ नहीं, वो तो आत्माराम आप तो काम है। इसलिए निहित प्रयोजन, निर्गत प्रयोजन, ये संसार से माया से संबंधित होना उसका प्रयोजन नहीं है, उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो आपके प्रयोजन के लिए वो सब बहुधा शक्ति योगात संबंधित होकर बीचैति चान्ते विश्व माधव सदेवा सदेवा प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप वो परमात्मा विचैति जानते, अंत में इस सारे विश्व को अपने में लीन कर लेता है, आदौ फिर पुनः सृष्टि के आरंभ में बहुधा शक्ति योगात अनेक रूप धारण करता है, तो बीच में भी चकार से वो ले लेना, स नो बुद्धिया सुभया संयुनक्तु हो, ऐसा जो परमात्मा हमारी बुद्धि को अपनी तरफ प्रवृत्ति करे, स न अस्माकम बुद्धिया हमारी बुद्धि को सुभया संयुनक्तु दियो यो न प्रचोदयात, उसी की व्याख्या है, शुभ कर्म में हमारी बुद्धि को वो परमात्मा लगावे। लो जी, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।